शरीर की मृत्यु अवश्यंभावी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आपका जन्म कहाँ हुआ, आप क्या करते हैं, आप कितने महत्वपूर्ण हैं या कितने कम महत्वपूर्ण हैं। ये शरीर जिसका उपयोग आप चलने, अनुभव करने और इस जीवन में आने वाली कठिनाइयों से गुजरने के लिए कर रहे हैं, वह नष्ट होने वाला है। यदि आप इस शरीर और अपने आसपास के लोगों से जुड़े हैं, यदि आप उनके शरीर से जुड़े हैं, तो ये सभी शरीर विलीन हो जाएंगे। इन उपकरणों से बोलना और सुनना अब नहीं होगा। यदि मृत्यु बुढ़ापे में हुई थी, जहां आप एक हिंदू की तरह रहते थे, आप अपने देवताओं में विश्वास करते थे, आपने वे अनुष्ठान किए जो आपको करने चाहिए थे, आपने एक परिवार बनाया, आपके परिवार का एक परिवार है। अब आप बूढ़े हो गए हैं, शायद आप 60 के हैं, शायद आप 80 के हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप पहले से ही दादा दादी हैं और आपने अपना जीवन जिया है, आपने अपना सर्वश्रेष्ठ किया है और अपने सभी कार्यों को उस भगवान को अर्पित किया है जिसकी आप पूजा करते हैं और जिस पर आप विश्वास करते हैं, तो जब आप मरते हैं तो यह एक वास्तविक बात है। लोग एक दूसरे को बधाई भी देते हैं जब उन्हें पता चलता है कि मरने वाला बहुत बूढ़ा था। फिर वे कहते हैं, अरे फिर वह भाग्यशाली थी या वह भाग्यशाली था। यह मंत्रमुग्ध करने वाला, शांत करने वाला और सुकून देने वाला है। ऐसे लोग हैं जिनके शरीर जल रहे हैं और उनके परिवार के सदस्य छाया में पीछे बैठे हैं और वे बहुत गंभीरता और ईमानदारी से बैठे हैं। उनमें से कई लोग बस अपने आप में हैं और मैं केवल कल्पना करता हूं कि वे क्या सोच रहे हैं और उनके दिमाग में क्या चल रहा है। और एक बात मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि वे इसके बारे में चिंतित नहीं हैं। वे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वास्तव में वे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वे जैसे हैं, हाँ मैं वहां जा रहा हूं। शायद कुछ ऐसे भी हैं जो इसका इंतजार कर रहे हैं, रुगन तरीके से नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा हूं, लेकिन जब तक मैं इस शरीर में जीवित हूं, तब तक यह मुझे और अधिक जीवंत महसूस कराता है। इसलिए मुझे नहीं पता कि आप इस विरोधाभास को समझ सकते हैं या नहीं। मौत के लिए तैयार, मौत के लिए उत्साहित, जीवन के लिए तैयार, जीवन के लिए उत्साहित, क्योंकि वास्तव में कोई अंतर नहीं है। लोग भजन गा रहे हैं और भक्ति गीत गा रहे हैं। और आपको बस बालकनी से झांकने की जरूरत है और पीछे की तरफ नदी है जिसके किनारे दाह संस्कार हो रहा है और लोग रो रहे हैं और यहां सन्नाटा और स्थिरता है और दोनों बहुत खूबसूरती से मौजूद हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं इसे रोमांटिक बना रहा हूं, लेकिन ये काफी रोमांटिक है और मुझे लगता है कि अगर इसमें रोमांस नहीं है तो जीवन जीना निराशाजनक है। लेकिन यह आकर्षक है। जीवन और मृत्यु, उत्सव और शोक दोनों को एक साथ एक दूसरे के बगल में होते हुए देखना मंत्रमुग्ध करने वाला, ज्वलंत और विनम्र है। मैं अभी जो कुछ भी सोच रहा हूं उसे साझा करना चाहता हूं। मैं सोचते हुए उसे रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो ये कच्चा, बिना संपादित है और इसका किसी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन चूंकि आप में से बहुत से लोग बार बार आते हैं और यहां कही जा रही बातों से जुड़ते हैं, तो ये रहा। मैं किसी के विश्वदृष्टि को नकारता नहीं हूं। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जीवन को किस तरह देखते हैं, आप किस में विश्वास करते हैं, आप क्या बनाते हैं, आप इस जीवन से क्या समझते हैं, आप किस धर्म का पालन करते हैं, आप किस शिक्षक को मानते हैं, आप कौन सी किताबें पढ़ते हैं, आप जीवन को कैसे समझते हैं। मैं किसी मॉडल में विश्वास नहीं करता। मुझे नहीं पता कि अगर हर कोई मेरे जीने के तरीके से जीने लगे, तो क्या इससे बेहतर समाज, बेहतर संस्कृति और बेहतर समुदाय बनेंगे। इसलिए मैं जो कह रहा हूँ उसमें कोई बड़ाई नहीं है, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वह भीतर से आता है और इसलिए मैं इसे जारी रखता हूँ। आज के वीडियो में हम जिस बारे में बात कर रहे हैं और देख रहे हैं, मृत्यु और जीवन, धर्म और अध्यात्म, अनुष्ठान, विचार और आदर्श, ये सभी संरचनाएं विचारों पर बनी हैं। आप कह सकते हैं कि ये भावनाओं पर भी बनी हैं। लेकिन एक बार जब कोई भावना उत्पन्न होती है, तो विचार ही भावनाओं को गति देता है। इसलिए विचारों से निर्मित इन संरचनाओं के बिना भावनाएं आती और जाती रहेंगी। भावनाएं संवेदनाएं हैं, बिना शब्दों के एक आंतरिक एहसास हैं। शब्द, मन, विचार, ये वो कारीगर हैं जो भावना से कुछ बनाते हैं। इसलिए जब मैं कहता हूं कि ये सभी संरचनाएं विचारों पर बनी हैं, तो मेरा साथ दें। यह एक सुंदर विचार है। इसमें से बहुत कुछ सुंदर है। जब मैं कहता हूं कि ये सब विचारों पर बना है, तो मेरा मतलब है कि आप भगवान के बारे में सोचते हैं। आप अपने मन में भगवान की एक छवि बनाते हैं। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर आप इसके बारे में सोचें, तो भगवान ने खुद को भगवान नाम नहीं दिया। ये नाम हमने ही बनाया है। और पुनर्जन्म का विचार, दूसरे शरीर में होना और पुनर्जन्म और मृत्यु के अंतहीन चक्रों से गुजरना, क्योंकि मृत्यु, जैसा कि आप देखते हैं, गंदी मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि आप देखते हैं, आप कोई नहीं हैं, कुछ भी नहीं, आप बस आते हैं, आप पीड़ित होते हैं और फिर आप चले जाते हैं। और अगर आप इसे कुछ दिनों के लिए उपेक्षित छोड़ देते हैं, तो आपका शरीर भी सड़ने लगता है। इसलिए ये जीवन केवल दुख और पीड़ा और कष्ट है, और इसलिए आपको इस दुख से बाहर निकलने के लिए और फिर से चक्र में वापस न आने के लिए कड़ी मेहनत करने और सभी प्रकार के अभ्यास करने की आवश्यकता है। यह एक बहुत ही गहरी विचार प्रक्रिया है। यह एक विश्वास प्रणाली है। जब लोग किसी चीज पर विश्वास करने लगते हैं, तो वह सत्य लगने लगती है। लेकिन अगर आप वास्तव में इसके बारे में सोचते हैं, तो आपको एहसास होता है कि यह भी एक विचार है। मान लीजिए कि विचार कुछ ऐसा है जो उतना ही भौतिक है जितना कि कोई भी अन्य चीज है। विचार केवल भौतिक पदार्थ हैं। हालांकि सूक्ष्म आप उन्हें छू नहीं सकते या देख नहीं सकते, लेकिन विचार इन सभी संरचनाओं, सभी अनुष्ठानों और सभी प्रणालियों का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए यह अंततः विचार है। अब अगर आपके पास इसे देखने के दो तरीके हैं, यदि आप या तो एक विचारहीन अवस्था में रहते हैं जहां आपके पास विभिन्न गहन क्षण हैं, या सामान्य विचारहीनता गहन अर्थ में गहन नहीं लगती है, ये बहुत ही सरल और सामान्य लगता है। शांति, मौन की उस अवस्था में बस होना और कोई विचार न रखना सबसे सामान्य बात है। सभी विश्वास प्रणालियां भी विलीन होने लगती हैं। सभी संरचनाएं टूट जाती हैं, वे गिर जाती हैं, या आप अपने विचारों की परवाह नहीं करते हैं। आपने एक बुद्धि का निर्माण किया है, या आपने अपने भीतर एक बुद्धि को जगाया है, या आप अपने भीतर की बुद्धि के प्रति जागरूक हो गए हैं। यहां शब्दों का चयन आसान नहीं है। तब आप अपने विचारों पर ध्यान नहीं देते, वे आते हैं और चले जाते हैं। जैसे आप नेपाल में कुछ देखते हैं, आप दूसरे देश में चले जाते हैं, आप किसी और चीज पर चले जाते हैं। हर चीज को आत्मसात करते रहना है, बिना किसी चीज को वास्तव में आपको छूने देना है, लेकिन पूरी तरह से उससे प्रभावित होना है। मैं इस विरोधाभास को कैसे संतुलित करूं? अब बात सरल है, जो वर्तमान क्षण में जीता है, जो वर्तमान को देखता है, वह केवल वही है जो है, और वह पूर्ण निडरता में जीता है, क्योंकि भय भी विचारों की संरचना है। आप वास्तव में किसी भी चीज के बारे में चिंतित नहीं हैं। आप कुछ क्यों चाहेंगे? आप अपनी किसी भी इच्छा को इतना वांछनीय क्यों बनाएंगे? देखिए, आपके जीवन में बहुत सारी इच्छाएं हैं, और फिर उनमें से कुछ वास्तव में तीव्र हैं, और आप उनकी मदद किए बिना नहीं रह सकते, और यही है। जैसा है वैसा ही रहने दें। किसी चीज को इतना महत्व क्यों देना? उसे मूल्यवान बनाएं। ये सब उस व्यक्ति के लिए अनावश्यक है जो चीजों को स्पष्ट रूप से देख रहा है। जो बस एक है वह यह है कि वह इस बात से चिंतित नहीं है कि चीजें कैसी होनी चाहिए। वह व्यक्ति अपने व्यक्तिगत कार्य और व्यवहार के बारे में चिंतित नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि स्पष्ट दृष्टि से प्रेम का विकास होता है, और प्रेम के साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता, भले ही वह गलत दिखाई दे। यह मुझे एक ईसाई संत के कथन की याद दिलाता है। उनका नाम क्या था? उन्होंने कहा था, प्रेम करो और जो चाहो करो। तो यह वही है।